الحمد لله وصفا والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह अनआम की तफसीर पढ़ रहे हैं। हमारे कुरान जिल्द नंबर 3 से, और आयात की जो तिलावत की गई है आयात नंबर 6 से लेके 11, तो इनके मारिफ व मसाइल कल हम पढ़ना शुरू कर चुके थे और हम पेज नंबर 285 तक पहुंचे थे, 285, जिसमें हमने करण के बारे में कुछ पढ़ा था, लफ्ज करण के बारे में। तो इसी को आगे से हम कंटिन्यू करते हैं कि यानी ये जो फरमाया था कि कम अहलकना मिन कब्लिहिम मिन करनिन, कि हमने इनसे पहले कितनी ही उम्मतों को हलाक कर दिया। तो करन की तारीफ में दो कौल हमें मिलते हैं। एक तो ये कि ये 100 साल यानी इसका मतलब 100 साल है, और दूसरा ये कि इसका मतलब एक नस्ल है, एक जेनरेशन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इस आयत में गुज़श्ता अक़वाम आलम के बारे में पहले ये बतलाया गया कि उनको हक तआला ने ज़मीन में वो वसअत व क़ुव्वत और सामान मईशत अता फरमाया था जो बाद के लोगों को नसीब भी नहीं हुआ। लेकिन जब उन्हीं ने रसूलों की तकजीब और अहकाम खुदाबंदी की मुखालफत इख्तियार की, तो ये सारा जाहो जलाल और मालो मनाल अल्लाह के अजाब के सामने बेकार साबित हुआ और सब के सब नीस तो नाबूद हो गए। तो आज के मुखातब अहल मक्का, जिनको ना आद व समूद जैसी कुव्वत व ताकत हासिल है, ना अहल शाम व यमन जैसी खुशहाली, उनको अक्वाम माजिया के वाकयात से इबरत हासिल करना और अपने अफआल का जायजा लेना चाहिए कि मुखालफत करके उनका क्या अंजाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सारिस ने कहा था कि थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ेगी, तो उसको पॉज कर दीजिए प्लीज, बस 4-5 मिनट में आज वापस आता है, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर। तो माफ कीजिएगा ब्रेक के लिए। तो जैसे कि हजरत ने फरमाया कि ये जो फरमाया था कि गुज़श्ता अकवाम को हमने हलाक कर दिया, तो जैसे कि तर्जुमे के दौरान भी बात हो चुकी थी कि जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दिया था उसकी अल्लाह ने कोई परवाह नहीं करी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मकसद से इंसान को दुनिया में भेजा ही नहीं था। असल मकसद ही इबादत था, और इबादत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के हुक्मों का लिहाज रखा जाए, उन हुक्मों की पाबंदी की जाए, उनके ऊपर पाबंदी करने की कोशिश की जाए, और सबसे पहले की बात किया कि उनको अल्लाह के अहकामात तस्लीम किया जाए, माना जाए। ठीक है, तो ये मकसद है। अगर इस मकसद को पूरा करेंगे तो फिर बाकी चीजें अल्लाह ताला देंगे, अल्लाह ताला उनको बरकरार रखेंगे। ठीक है, बाकी नेमतें ये एड ऑन्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये मिलेंगे भी, अल्लाह ताला इनकी प्रिजर्वेशन भी करेंगे, लेकिन अगर असल मकसद को पसे पुश डाल दिया जाएगा या उसका इनकार कर दिया जाएगा, तो फिर ये सारी के सारे एड ऑन जो है ना, ये सब के सब जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे हत्ता के इंसान की इज्तिमाई मौत का भी इंतजाम कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी जान भी वापस ले ली जाएगी, जो बिल्कुल बेस है। ये सब तो एड ऑन्स है ना, ये जो नहरें हैं और ये जो बिल्डिंग्स हैं और ये जो दूसरी तरक्कियाती काम हैं, ये तो एड ऑन्स हैं, एडिशनल चीजें हैं, लेकिन बेस क्या है, इंसान की अपनी जान है, ठीक है। तो जब नाफरमानी होती है तो एड ऑन्स भी वापस और जो बेस है वो भी वापस, इसी को अजाब कहते हैं। आखिर आयत में इरशाद फरमाया, वअंशअना मिन बादिहिम करनन आखरीन, यानी अल्लाह जल्ल शानहु की कुदरत कामिला का सिर्फ यही तसर्रुफ नहीं था कि बड़ी बड़ी जाहो जलाल और हुकूमत सल्तनत की मालिक और डेल डोल व कुव्वत ताकत वाली कौमों को चशम जदन में हलाक बर्बाद कर दिया, यानी एक आंख के झपकने के लम्हे में, इतने से टाइम पीरियड में सबको हलाक कर दिया, बल्कि उनको हलाक करते ही उनकी जगह दूसरी कौमें पैदा करके इस तरह से बसा दिया कि देखने वालों को यह भी महसूस ना हो सका कि यहां से कोई इंसान कम भी हुआ है, यहां से कोई इंसान कम भी हुआ है। तो पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर ये उसूल रखा, ये तरीका बनाया कि किसी चीज को बिल्ड करने में टाइम लगता है, ठीक है, बिल्ड करने में टाइम लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको के टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी किसी चीज को बिल्ड करने में, उन्होंने अपने इख्तियार से टाइम लगाया, अपने इख्तियार से, अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से इस दुनिया को बिल्ड करने में टाइम लगाया। क्या मतलब कि 6 दिनों के अंदर ये निक्की सी दुनिया, निक्की कहते हैं ना पंजाबी में भी, शायद कहते हैं हम भी कहते हैं किसी बहुत ही छोटी सी चीज को, उसको हम निकी कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ बड़े भी हैं जो कि अब माशाल्लाह बुजुर्गी की उम्र को पहुंच चुके हैं, लेकिन जब वो छोटे थे तो उनका नाम निकी पड़ गया, तो अभी तक उनको निकी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी बड़े मजे मजे के निकनेम्स होते हैं, बुढ़ापे में भी वही निकनेम्स चलते रहते हैं, कोई मुन्नी थी तो वो बुढ़ापे में भी मुन्नी है, कोई बेबी थी तो वो बुढ़ापे में भी बेबी है, राइट, कोई बुन्नी थी, सुना किसी का नाम बुन्नी भी था तो वो बुढ़ापे में भी बुन्नी है, तो कोई निकी है तो वो बुढ़ापे में भी निकी है। बहरहाल, तो ये दुनिया जो है ना, ये अल्लाह ताला के अर्श के मुकाबले में, जन्नत और जहन्नम के मुकाबले में, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, ठीक है। और इवन जो आसमान है वो भी आलम खल्क में ही आते हैं, 7 आसमान जो है ना वो भी आलम खल्क में ही आते हैं, तो आलम खल्क के ऊपर की दुनिया जो कि जन्नत, राइट, और जो है ये अर्श है और अल्लाह ताला की कुर्सी है, इनके सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है, बहुत ही छोटी चीजें हैं ये, ठीक है। तो इनको बनाने में अल्लाह ताला ने 6 अय्याम लगाए, ठीक है। अच्छा, अर्श को बनाने में 6 अय्याम नहीं लगाए, उनको बनाने में कुन फयकुन, वो आलमे अमर कहलाता है कि बस हुक्म दिया हो गया, ठीक है। तो अब जब अल्लाह ताला ने निजाम बना लिया है तो इसी निजाम के तहत अल्लाह ताला इसका निजाम चलाते भी हैं, ठीक है, कि यहां पर कोई चीज जब बनती है तो तदरीजन बनती है, वक्त लगता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हलाकत का निजाम कैसा बनाया कि जब कोई चीज हलाक होने पर आती है ना तो वो आनन फानन चशम जदन में, ठीक है, अल्लाह ताला का अजाब जब फरिश्तों के जरिए से आता था तो उस वक्त भी आनन फानन हलाकत होती थी और हर चीज बर्बाद हो जाती थी, और अभी भी जब इस किस्म का मामला इंसानों के बनाए हुए हथियारों के जरिए से आता है तो उस वक्त भी आनन फानन जो है ना वो सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी एक मिसाइल दागा जाता है, राइट, एक बॉम्ब फेंका जाता है और नीचे जितनी कंस्ट्रक्शन आपने करी हुई थी वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो बर्बाद हो जाती है, रिहाइश के काबिल नहीं रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि तुम जहां पर बिल्ड करने की मेहनतें कर रहे हो ना, जब तुम बिल्ड करने की मेहनतें कर रहे हो किसी चीज को, तामीर की मेहनतें कर रहे हो, तो साथ साथ कौन सी वाली मेहनत भी करते चले जाओ, हिफाजत की मेहनत भी करते चले जाओ, राइट, प्रोटेक्शन की मेहनत भी साथ साथ करते चले जाओ, क्योंकि बिल्ड की हुई चीज को बर्बाद होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। तुमने सालों की मेहनत से इमारतें बनाई होंगी लेकिन मिनटों के अंदर वो इमारतें बर्बाद हो जाएंगी, तो
उसी तरीके से रूहानी दुनिया से भी के बारे में बात की जाए, यानी दीनी एतबार से बात की जाए, तो तुमने सालों मेहनत करके आमाल बनाए होंगे, आमाल बनाए होंगे, ठीक है ना, सवाब इकट्ठे किए होंगे, लेकिन अगर तुमने कोई ऐसा गुनाह कर दिया, ठीक है, शिर्क का गुनाह कर दिया, कुफ्र का गुनाह कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी का गुनाह कर दिया, ठीक है, इनकार का गुनाह कर दिया, तुमने किसी अल्लाह ताला के कतई हुक्म का इनकार कर दिया जिसको कुफर कहते हैं, तो फिर ये तुम्हारी सालों की मेहनतें जो हैं वो चशम जदन में बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से हिफाजत की मेहनत जो है वो साथ साथ चलते रहने चाहिए, ठीक है। अब दुनियावी दुश्मन से हिफाजत के लिए हम मिलिट्रीज बनाते हैं और एयरफोर्स और नेवी और सर्वेलेंस सिस्टम और सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम, तो पता नहीं कौन कौन से सिस्टम्स बनाते हैं ना दुनियावी दुश्मन से हिफाजत के लिए, कि हाँ भी मुल्क में हमने सड़कें बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं, डैम बनाए हैं, और जो है वो पता नहीं क्या क्या हमने काम किए हैं, उधर से कहीं कोई मिसाइल आ करके इनको खत्म ना कर दे, तो बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं। उसी तरीके से रूहानी दुनिया के अंदर अपने आमाल की हिफाजत उनके दुश्मन से, उनका दुश्मन कौन है, जो हमारा दुश्मन है, हमारे जद्द अमजद आदम अलैहि सलाम को दुश्मन था शैतान, शैतान से हिफाजत के लिए भी साथ साथ जो है वो इंतजाम करते रहे। एक इंतजाम तो सबको पता है, दीनदारों को पता है, अल्लाह से दुआ करना, ठीक है, अल्लाह से दुआ करना कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है ना, तो ये इंतजाम करना, अल्लाह से दुआ करना, लेकिन बस यहीं पर रुक ना जाना, ठीक है, यहीं पे रुक ना जाना, बल्कि जिस तरह बाकी चीजों की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं या करनी चाहिए कम से कम, फिर उसके बाद असबाब इख्तियार करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से शैतान से बचने के लिए भी अल्लाह से दुआ करते हैं, फिर उसके बाद असबाब इख्तियार करते हैं, ठीक है, शैतान से बचने के असबाब इख्तियार करते हैं। वो असबाब क्या हैं, कि नबी अलैहिस्सलाम के बनाए हुए उसवे हसना के अंदर दाखिल हो जाए, ठीक है, अपना ताल्लुक जो है वो मशाइख से बनाना, शेख के साथ ताल्लुक बनाना, ठीक है, ये है असबाब शैतान से हिफाजत के असबाब, ठीक है, ये इख्तियार नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास इसके लिए हमारे पास जवाब मौजूद है, कि तुमने जब दुनियावी छोटी छोटी सी निक्की निक्की चीजों की हिफाजत के लिए असबाब इख्तियार किए थे, हथियार बनाए थे और पूरी पूरी जो है ना वो तुमने जमातें बनाई थी, आर्मीज बनाई थी, तो ये चीज गैर अहम थी कि इसके लिए तुमने कोई सबब इख्तियार नहीं किया, हालांकि मैंने अपने नबी अलैहिस्सलाम को भेज करके पूरा का पूरा तुम्हें सिस्टम दिखा दिया था, सिखा दिया था पूरा का पूरा सिस्टम, लेकिन फिर भी तुमने उसको इख्तियार नहीं किया, और तुम जो है वो झूठ बोलते हो कि तुम मुझसे दुआएं मांगते रहे थे शैतान से इबादत के लिए, ये झूठ है खाली, ठीक है, कि हम दुआएं तो मांगते थे शैतान से इबादत के लिए, असबाब क्यों नहीं इख्तियार किए तुमने इस काम के लिए। और दूसरी बात ये है, यानी ये तो एक बात थी चशम जदन के लफ्ज के ऊपर, और दूसरी बात ये है कि जैसे क्या फरमाया ना कि अल्लाह ताला सिर्फ हलाक ही नहीं कर देते बल्कि दूसरे लोगों को रिप्लेस कर देते हैं फौरन, ठीक है, तो ये जो हमारी एक एक जहन में एक सोच होती है ना, पहली सोच तो हमारे जहन में यह है कि हमने नहीं मरना है, ठीक है ना, हर दूसरे ने मर जाना है, क्योंकि अब देख रहे हैं लोगों को मरते हुए, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि दूसरों ने भी नहीं मरना है ना, कब्र में भी उतार के आते हैं, नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं, ताजियत करके भी आते हैं, खवातीन जो हैं वो कब्र में उतारने का काम नहीं करती, नमाज जनाजा में अगर शामिल नहीं होती, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए, ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की सुन्नत नहीं है कि खवातीन भी भागी भागी चली जाएं, ठीक है, तो खवातीन नमाज जनाजा में शामिल नहीं होती, कब्र में नहीं उतारती, मियत के साथ नहीं चलती, लेकिन वो ताजियत करने तो आती है ना, ठीक है, तो दूसरों को मरने का तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अपने मरने का ऐसा है कि नहीं बस मैंने नहीं मरना, ठीक है, मैंने नहीं मरना, बाकी हर एक ने मर जाना है सिवाय मेरे, ठीक है, मैंने कब्र में जो है ना वो कफन पहना करके मुझे कब्र में नहीं उतारे जाना, कब्र की तारीकी जरा सा इमेजिन करें, अब तो बहुत आसान है, कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है किसी को, है व्हाट्सएप के वो जो वो है ना क्या नाम है, मैप्स की एप्लीकेशन होती है हर एक के फोन के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर किसी कब्रिस्तान का नाम लिख दें, ठीक है, तो वो कब्रिस्तान ले जाएगा आपको और वहां की वीडियोस भी दिखा देगा, ठीक है, बल्कि कब्रों के अंदर की भी तस्वीरें दिखा देगा, ठीक है, कि कैसे कब्र होती है, कैसे जो है वो एक जगह बनाई हुई होती है जहां पर के मुर्दे को लिटा दिया जाता है, और उसका फिर मुसलमान होता है तो उसका रुख किबले की तरफ कर दिया जाता है, और फिर उसको ऐसे बंद किया जाता है कि रोशनी तो क्या हवा का भी गुजरना हो, वहां पर हवा का भी गुजरना हो, ठीक है ना। अब उसके ऊपर यही आता है कि भाई बस खत्म बात, ठीक है, लटा दिया जाएगा तो उस वक्त तक तो मेरा मामला खत्म हो चुका होगा, ठीक है, लेकिन फिर ईमान है क्या? ईमान तो हिसाब किताब का नाम है, हिसाब किताब के ऊपर ईमान का नाम है, तो भाई वो जो लटा दिया जाएगा तो इट्स नॉट द एंड ऑफ इट ना। मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, कल गाफिल के ऊपर बात हो रही थी ना, गाफिल कौन होता है और जाकिर कौन होता है, अल्लामा इकबाल ने मजीद इसके ऊपर रोशनी डाल दी, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी है ये शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी, इसके बाद तो एक ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू होने वाली है, ये तो सिर्फ एक दिन की शाम है बस, ठीक है, तो वो कब्र में लिटा भी दिया जाएगा तो वो बस ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा मामला, फिर वहां पे सारा का सारा हिसाब किताब है, अगर आप उसको तस्लीम करते ही नहीं है तो फिर ये क्या ढोंग रचा रखा है आपने, मुसलमानियत का क्या ढोंग रचा रखा है, राइट, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है कि हाँ जी कुरान है और नबी अलैहिस्सलाम है और हम मुसलमान हैं, और ठीक है, अगर कब्र के ऊपर ईमान ही नहीं है, हिसाब किताब के ऊपर ईमान ही नहीं है, तो है ना वो सब कुछ तो है, तो फिर खाली गजाल की तरह आंखें बंद कर लेना इन हकीकतों से, जैसे गजाल आंखें बंद कर लेता है तो और समझता है, ये कहावत है खाली, ये एक जरबुल मिसल है कि वो आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि शेर अब उसको आके नहीं खाएगा, ठीक है ना, तो अब मौत से आंखें बंद कर ली तो अब इसका ये समझना शुरू हो गया कि नहीं ना तो मरना है, ना मरने के बाद कोई हिसाब किताब होगा, ठीक है, तो आंखें बंद कर लेने से तो ऐसा नहीं होता ना, वो तो होना है जो कुछ होना है। क्या लिखा इन्होंने कि क्या हम शैतान का ध्यान तो रखते हैं और उससे पनाह मांगते हैं लेकिन औलिया उस शैतान का ध्यान नहीं रखते, यानी जो इंसानों में है उनसे नहीं बचते, औलिया उस शैतान का ध्यान नहीं रखते यानी जो इंसानों में है उनसे नहीं बचते हैं, उसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह के कुरान को जो है ना वो पसे पुश डाला हुआ है, अल्लाह के कुरान से हम हिदायत हासिल नहीं करते ना, ठीक है, तो इस वजह से हम समझते हैं कि बस एक कोई शैतान है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया था और वो बेचारा अकेला है, तने तनहा है, देयर इज नो वन टू हेल्प हिम, है ना, बड़ा बेआसरा किस्म की चीज है वो, ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद के अंदर तो हमें कुछ और बताते हैं कि ये जो शयातीन हैं ये तो इंसानों में से भी हैं और जिन्नों में से भी हैं, और जिन्नों के अंदर तो बहुत बड़ी तादाद में शयातीन मौजूद है और इंसानों के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में शयातीन मौजूद है, ठीक है, तो उस एक इबलीस की जो सपोर्टिंग यानी ब्रिगेड है वो तो बहुत बड़ी है ना, तो अब यही बात हो गई कि हाँ जी मैं दुश्मन के बादशाह से तो बचता हूँ तो उसकी तो मैं बड़ी फिक्र करता हूँ, लेकिन दुश्मन की जो आर्मी है ना, मैं आर्मी से बचने की मुझे कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना, तो भाई बादशाह ने जो है वो खुदा करके कोई थोड़ी हलाक करना होता है, ठीक है ना, किसी भी मिलिट्री का जो बादशाह होता है या कोई जो सिपा सरार होता है वो आकर के हर एक को तो नहीं मार रहा होता, उसने तो अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री रखी हुई है, तो वो मिलिट्री के लोगों को भेजता है ना मरवाने के लिए मारने के लिए, तो आप जो है वो मिलिट्री से बेखौफ होकर के बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं कि पता नहीं वो शैतान है, तब ये बेवकूफी की बातें हैं बस, नहीं देते तो ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो रिप्लेस कर देते हैं, मौत आती है अजाब आता है और अल्लाह ताला रिप्लेस कर देते हैं, हमें कोई याद नहीं रखता, ठीक है ना, अगर कोई याद रखे भी तो बस चंद दिन की बात है, चंद दिन को याद रखेगा वो भी उस वक्त याद रखेगा जब उसकी आपके ऊपर डिपेंडेंसी बनी हुई थी, राइट, रोजमर्रा में जो है ना वो आप उनको खाना देते थे, अब खाना नहीं मिल रहा उनको तो अब आप याद आएंगे उनको, वो भी चंद दिन, क्योंकि चंद दिनों में खाने का कोई और ऑल्टरनेटिव इंतजाम हो जाएगा, राइट, छोटे बच्चों की अम्माएं इस बात को याद रखें कि अगर वो इस दुनिया से चली गई उनके बच्चे छोटे हैं तो चंद दिन तो बच्चों को खाने का थोड़ा तो मुश्किल होगी, लेकिन अल्लाह ताला ऑल्टरनेट पाथवेज बना देते हैं, फिर जो है ना वो आप भी उनको याद नहीं आएंगी, और अगर कोई बुढ़ापे में इस दुनिया से गया है तो बूढ़े इंसान के ऊपर तो वैसे ही कोई डिपेंड नहीं कर रहा होता, राइट, बूढ़े इंसान पर तो वैसे ही कोई डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो उसको तो एक यानी शायद कब्रिस्तान से वापसी के बाद भी कोई आपको याद ना रखे, ठीक है, और अगर दीनदार नहीं होंगे तो फिर तो खसकम जहां पाक कहेंगे वो अपने दिलों के अंदर और अपनी जुबान के अंदर, खसकम जहां पाक, राइट, खस कम हो गई, पता नहीं इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, लेकिन खस जो है वो कम हो गई, जहां पाक हो गया, चला गया दुनिया से, जान छूटी हमारी, राइट। अगर आखिरत का की फिक्र करने वाले और अल्लाह रसूल का की बातों का ख्याल रखने वाले नहीं होंगे तो फिर तो वो आपके दुनिया से जाने के बाद ये कहेंगे, ठीक है। तो किन के ऊपर किन के साथ दिल लगा करके बैठे हुए हैं, किन के साथ जो है ना वो ताल्लुक बना करके बैठे हुए हैं कि हाँ जी ये हमारे बड़े वो हैं पेट्रियॉट्स हैं और हमारे बड़े फेथफुल्स हैं, दे रिमेम्बर अस एंड दे विल रिमेम्बर अस एंड ये एंड वो, ठीक है, नो वन विल रिमेम्बर अस, नो वन विल रिमेम्बर अस, ठीक है। हाँ ये जो अभी दहन में आया था निकल गया, आपने याद दिला दिया, वो व्हाट्सएप के ऊपर भी किसी ने वायरल किया था कि मैं अहम था ये वहम था, मैं अहम था आई वॉज समथिंग सिग्निफिकेंट ये मेरा वहम था, ये मेरी खुशगुमानी थी कि मैं तो बड़ा अहम था, मैं तो लोगों के बड़ा काम आया करता था, ठीक है भाई। सच्ची बात यह है जिसको हम माने या ना माने, आप अगर किसी को याद आएंगे ना तो वो सिर्फ उस वक्त याद आएंगे जब अल्लाह आपको याद दिलवाएगा, जब अल्लाह उनके दिल में बात डालेगा ना आपके बारे में, तब आप उनको याद आएंगे, वरना आप हरगिज किसी को याद नहीं आएंगे। तो बात वही घूम फिर करके आ गई कि भाई या बहन लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हो, अल्लाह के पीछे क्यों नहीं पड़ते, अल्लाह से लॉ क्यों नहीं लगाते, अल्लाह को राजी क्यों नहीं करते, और अल्लाह को राजी करने का मतलब उसके अहकामात की फिक्र करना, उसके तरीके का लिहाज करना। अल्लाह को राजी करोगे, अल्लाह ताला जब चाहेंगे किसी को याद दिलवाएंगे, और जब नहीं भी याद दिलवाएंगे तो भी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो भी तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो तुम्हें नहीं भूलने वाला है, सब भूल जाएंगे, अल्लाह नहीं भूलने वाला है, ठीक है। तो इस कमीनी दुनिया से दिल लगाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस कमीनी दुनिया से दिल लगाने का। यहां पे जो भी करना है, जिसके लिए भी करना है, सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। और अगर कोई ऐसा काम है जिसमें अल्लाह राजी होता हुआ नहीं नजर आता, यानी वो कुरान हदीस से साबित नहीं है कि इस काम से अल्लाह राजी होगा, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, कोई जरूरत नहीं है वो वाला काम करने की, कोई जरूरत नहीं है ऐसा कोई काम करने की जिससे अल्लाह की रजा ना बनती हो, यानी जिसको गुनाह कहते हैं, जिसको गफलत कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है गुनाह का कोई काम करने की, ठीक है, क्योंकि उसमें अल्लाह की रजा नहीं है। तो जो भी करना है, चाहे बीवी से मोहब्बत से बात करनी है अल्लाह की रजा की खातिर, बच्चों को प्यार करना है, बच्चों के साथ जो है वो चिड़ियाघर जाना है, बच्चों के साथ पार्क जाना है अल्लाह की रजा की खातिर जाना है पार्क, राइट, बच्चों के लिए हमने छोटा सा एक है गार्डन बनाया है, पिंजरा बनाया भी कि भी उनमें बर्ड्स रखेंगे, क्यों, बच्चे खुश होंगे, नहीं अल्लाह खुश होगा, बच्चों का इस तरफ जो है वो ध्यान लगेगा, खराफात की तरफ उनका ध्यान जाने से बच जाएगा, ठीक है, उल्टी सीधे कामों के अंदर उनका वक्त उनका ध्यान नहीं जाएगा, इस नीयत से बनाया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, ठीक है ना। जो करना है सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, किसी दूसरे के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका मामा हो, चाचा हो, फुप्पा हो, दादा हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है उनके लिए अगर उसमें अल्लाह राजी ना होता हो, यानी गुनाह करने की जरूरत नहीं है किसी माँ की खातिर, गुनाह करने की जरूरत नहीं है किसी बाप की खातिर, किसी बाप की खातिर गुनाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें याद नहीं रखेगा, तुम्हारी माँ भी तुम्हें याद नहीं रखेगी, वो नहीं कर सकती तुम्हें याद, अल्लाह ही तो है, और है कौन हमारा, और है कौन हमारा, सही, और जिसका अल्लाह है उसको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है उसको। आगे फरमाते हैं, और हक जल्द आला शान हूं कि इस कुदरत व हिकमत का मुशाहिदा तो वैसे भी हर जमाने हर वक्त में होता रहता है कि रोजाना हजारों लाखों इंसान हलाक होते रहते हैं। तबी मौत तो आज भी चल रही है, लाखों रोजाना हलाक हो रहे हैं। कोई बम बम मारने की जरूरत नहीं होती है लाखों को हलाक करने के लिए, मगर कहीं खला नजर नहीं आता, कहीं खला नजर नहीं आता आपको ना, कहीं ये महसूस नहीं होता कि यहाँ के आदमी हलाक हो गए तो इसमें बसने वाले ना रहे। ये महसूस होता है आपको? अब ये आज इस वक्त जिधर बैठ करके आपकी क्लास कर रहे हैं ना, ठीक है ना, कितना 11 मार्च, आज कौन सी मार्च है, 20 मार्च है ना, तो आज से जो है वो 9 दिन पहले यहाँ पे हमारे वालिद साहब जो है वो बिस्तर के ऊपर लेटे होते थे, इस कमरे में उनकी सारी की सारी चीजें होती थी। मैं आपको सबको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं है हम उनकी यादगारें जो है वो सजा करके रखे रहे यहाँ पर, हरगिज नहीं, ये कोई यादगारों का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे दीन के अंदर। अब्बा की, अब्बा याद आएंगे, अब्बा को याद करने के और तरीके हैं, अल्लाह ताला याद दिलाता रहता है। कल ही किसी भाई से बात हो रही थी, वो अपने वाकयात बता रहे थे कि आपके वाले साहब ने ऐसे हमारी मदद करी, ऐसे हमारी जो है मुश्किल को हल करने में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन करी, अल्लाह ताला इंतजाम कर रहा है याद दहानी का। लेकिन जितनी चीजें थी वो आहिस्ता आहिस्ता हम सारी की सारी निकाल रहे हैं। मैं बरमना सबके सामने बोल रहा हूँ, उनका बिस्तर भी जो है अब निकालने वाले हैं, जो हॉस्पिटल बेड था हॉस्पिटल वालों को वापस कर रहे हैं, लेके नहीं जा रहे मुसीबत वो लोग यहां से, लेके जाएंगे ताकि उसके ऊपर कोई दूसरी चीज लेकर के आए। उनकी जगह पे अब अपनी टेबल जो है वो सजा ली है, इसमें बैठ करके अब क्लास कर रहे हैं। ये है हकीकत इस दुनिया की। और मुझे कोई शर्म नहीं है बात आपको बताने में कि वालिद साहब के कमरे को टेक ओवर कर लिया गया है, मैंने खुद टेक ओवर किया है, ये नहीं कि मेरी बीवी ने कहा था टेक ओवर करने के लिए, हरगिज नहीं, मैंने खुद टेक ओवर किया है। आपके साथ भी यही होने वाला है, मेरे साथ भी यही होने वाला है, एंड आई शुड नॉट हैव एनी बैड फीलिंग अबाउट इन माई हार्ट कि मेरे मरने के बाद जो है वो मेरी चीजों को, बेटा मेरी चीजों को हिफाजत से रखना, मेरी चीजों को तुम जो है वो चैरिटी में ना दे देना, और मेरी चीजों को जो है वो उठा करके कहीं और ना बेच ना देना, मेरी चीजों की हिफाजत करना, नहीं, क्यों क्यों, कौन से, पहली बात तो ये है कि मेरे मरने के बाद मेरी चीजें खत्म, मेरी आंख बंद हुई मेरी मिल्कियत खत्म होगी इस दुनिया से, मेरी अब कोई चीज है ही नहीं, वो तो सारी की सारी वरसा की बन चुकी है, मुंतकिल हो चुकी है ऑलरेडी, इधर सांस निकली खत्म हुई, रूह परवाज कर गई, मेरी मिल्कियत खत्म हो गई हर चीज से, तो कौन सी वाली आप यादगारों की बातें कर रहे हैं कि मेरी यादगारों की हिफाजत करना, मेरे साथ तो सिर्फ मेरा कफन जाएगा और मेरे आमाल जाएंगे, और वो कफन भी जो है ना वो अल्लाह ताला की मर्जी हुई, वो कफन भी जो है चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो आमाल है और वो ईमान है, ईमान है और फिर उसके बाद आमाल है जो कि मेरे साथ रहेगा और आपके साथ रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा आपके साथ। और इस किस्म की डिमांड्स करने के भी कोई तुक नहीं बनती है, कोई वजह नहीं बनती है कि मेरी चीजों को जो है वो चेंज मत करना और मुझे देख देख उनको देख देख करके मुझे याद करना, ये चीजें रह गई हैं हमें याद करवाने के लिए। अल्लाह किधर गया, अल्लाह अपना काम नहीं कर रहा ना, नाउज बिल्ला, यानी हम तस्वुर नहीं करते कि अल्लाह अपना काम करेगा, इस वजह से हम कहते हैं चीजों को प्रिजर्व करना, राइट, मेरी चीजों को सजा के रखना, उनको देख के तुम मुझे याद करोगे, अल्लाह किधर गया, अल्लाह का फंक्शन, अल्लाह का रोल किधर चला गया, फिर यही मसला है हमारा। बड़े बड़े दीनदार भी होते हैं ना तो अल्लाह जो है ना वो पिक्चर से गायब होता है हमारी, चीजें अहम होती हैं, चीजें याद दिलाएंगी हमें, अल्लाह याद नहीं दिलाएगा हमें, सही बात है कि गलत बात है? तो जान छोड़ें इस दुनिया की, असल में बात क्या कहने चाह रहे हैं, इस दुनिया की जान छोड़ें, अपने दिल में जो बसाया हुआ है ना इस दुनिया को निकालें दिल से, इस दुनिया को, ये दुनिया इस काबिल नहीं है दिल में बसाने की, ये दुनिया इस काबिल नहीं है, दिल में तो सिर्फ अल्लाह को बसाना है, सिर्फ अल्लाह को बसाना है, ये कोई डस्टबिन बनाया हुआ है दिल को, कचरा खाना उसके अंदर, राइट, कचरा जो है ना वो डस्टबिन में डालते हैं, ये दिल हमारा डस्टबिन है, उसके अंदर दुनिया का कचरा डालते रहते हैं, नहीं। आगे फरमाते हैं, खुदा जाने ये दुनिया जलवागाहे नाज है किसकी, हजारों उठ गए, रौनक वही बाकी है मजलिस की। क्या फर्क पड़ गया, चंद ताजियतें हो गई हैं, चंद जो है वो किसी ने इशारे सवाब कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया को तुम्हारे जाने से मेरे जाने से। एक मरतबा मैदान अरफात में, जहां तकरीबन 10 लाख इंसानों का मजमा था, ये हजरत अपना वाकया बयान कर रहे हैं, हज पे गए थे, 10 लाख इंसानों का मजमा था, तो उस तरफ नजर गई, इस तरफ नजर गई कि आज से तकरीबन 70-80 साल पहले इस सारे मजमे में से किसी इंसान का वजूद ही नहीं था, राइट। लोग थे ही नहीं इस दुनिया के अंदर ये, जो के सारे यहाँ पे मैदान अरफात के अंदर मौजूद हैं, और इस जगह पर तकरीबन इतने ही इंसान दूसरे मौजूद थे जिनका आज नामो निशान भी नहीं है, मर गए वो सारे के सारे। इस तरह इंसानों के हर इज्तिमा और लोगों के हर झुरमट को जब उसके माजी व मुस्तकबिल के साथ मिलाकर देखा जाए तो एक बहुत ही मुअस्सर वाइज नजर आता है। ये सब वाज करने वाले, यानी एज एफ ये जो दर्स कुरान है ना, ये दर्स कुरान ये चीजें दे रही हैं हमें, राइट। ये अरफात का मैदान ये दर्स कुरान दे रहा है कि कुल्लु नफ्सिन जाएकतुल मौत, राइट। ये सारे यहां पर जो थे, देखें दुनिया की चीजों को देखें, उनमें फिर थोड़ा सा ज्यादा दवाम है। ये मैदान अरफात तो नहीं होता ना कि ये चंद साल गुजरे हुए मैदान अरफात की मौत हो गई, अब वो वहां पे कोई और मैदान बन गया है ना, वहां पे जो जबले रहमत है, अब कुछ अरसा गुजरा, जबले रहमत खत्म हो गया, अब जो है वो कोई नया जबले रहमत उसकी जगह पर आ गया। जबले रहमत है, मिना का मैदान है, इनकी तो लाइफ जो है वो माशाल्लाह हजारों साल से चली चली आ रही है, और आगे भी पता नहीं कितने हजार साल और चलेगी जब तक कि कयामत नहीं आती। इंसान कितना कम उम्र है, कितना कम अरसे वाला, और उसकी जिंदगी कितनी जल्दी खत्म होती है, आनन फानन खत्म होती है, राइट। हमारे ये जो टेबलें हैं, ये जो वालिद मोहतरम वालिद मरहूम का जो बेड है, ये तो नहीं दुनिया से चला गया, जो उनके कपड़े हैं वो तो नहीं दुनिया से चले गए उनके साथ, राइट। उनके इस्तेमाल की चीजें वो तो दुनिया से नहीं गई, वो तो दुनिया में मौजूद है, वो चले गए। इंसान इंसान चला जाता है, चीजें फिर ज्यादा दवाम के साथ इस दुनिया में रह जाती हैं, और अल्लाह ताला तो अजल से हैं, अबद तक हैं, कोई अल्लाह ताला को इख्तिताम नहीं है अल्लाह ताला का, ठीक है। उन्होंने लिखा है यहाँ पे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है, ठीक है। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ये कहाँ चले गए, इतनी बेहतरीन मारुफुल कुरान अपना अमल कर गए, उनका अमल बाकी है, उससे सारी इंसानियत फायदा उठा रही है, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह नहीं रहे यहाँ पर, गुजर गए। कितना फायदा मंद शख्सियत थी वो, लेकिन इतनी फायदेमंद शख्सियत को भी अल्लाह ताला ने मोहलत नहीं दी, है ना। अब वो दोस्तों से बात हो रही थी कि दफ्तरों में होता है ना कि जो जरा ज्यादा काम का एम्प्लॉय नजर आता है ना, तो उसको वो एक्सटेंशन दे देते हैं, है? कि हाँ भाई आप हमारे काम के बड़े जबरदस्त, आपने जो है ना वो हम हमारा रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आप चले हम आपको रिटायरमेंट एज के बाद भी 5 साल के लिए मजीद रख लेते हैं, किसी को 10 साल के लिए रख लेते हैं। हत्ता के गवर्नमेंट जो हैं वो ऐसे काम के लोगों को जो है ना वो अगर वो फॉरेनर हो तो वो उनको सिटीजनशिप दे देती हैं, ठीक है ना। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो बड़ा अवार्ड मिलता है कि जी फलाने इंडियन साहब को जो है वो सऊदी सिटीजनशिप मिल गई, क्योंकि काम के थे हमारे, है ना। अब यहाँ से जो है ना उनको अपने मुल्क वापस नहीं जाना पड़ेगा, सऊदी अरब में ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। दुनिया वाले एक्सटेंशन दे देते हैं, है कोई काम का होता है उनका, ठीक है, दुनिया वाले सिटीजनशिप दे देते हैं कि जी वापस अपने मुल्क को ना जाना पड़े कहीं उनको। अल्लाह रब्बुल इज्जत कि हम कोई काम के नहीं बन सकते, कितना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम कर भी ले ना, दीनदार बन जाए, नेक बन जाए, सालेह बन जाए, हत्ता के मुसलेह बन जाए, मुसलेह भी बन जाए, यानी दूसरों की इसलाह की मेहनत करने वाले भी बन जाए, अल्लाह ताला के पास कोई एक्सटेंशन नहीं है, अल्लाह ताला एक्सटेंशन नहीं देते, क्योंकि अल्लाह ताला अस्समद है, अस्समद बेनियाज, अल्लाह ताला को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इन कंपनी वालों को, इन हुकूमतों वालों को लोगों की जरूरत होती है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अपने हबीब अलैहिस्सलाम को एक्सटेंशन इन द सेंस ये है कि हाँ कुछ हदीसें हैं, मेरे ख्याल में तो वो शायद ज़यीफ़ हदीसें हैं, अल्लाह आलम, लेकिन वो जो है कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो अल्लाह ताला ने चॉइस रखी कि अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, नहीं आना चाहते हैं तो यहीं पर आइए। लेकिन उसमें भी फिर ये था कि जहां पे आप जितना भी रहेंगे ना, बिलाखिर तो ये खत्म ही हो जाएगा। अगर आप चूज करेंगे, इख्तियार करेंगे इस दुनिया में रहने को, लेकिन फिर भी इस दुनिया की तो लाइफ में खत्म होना ही है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तियार फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला आप ही मेरे रफीकुल आला है। ठीक है, तो ये एक वाहिद इंसानियत के अंदर, वो भी मुझे नहीं सही पता कि वो ज़यीफ़ हदीस है कि वो सही हदीस है कि वो, ठीक है, मोहताज जमीन के बयान में बहुत ज्यादा इस वाला है, इस तरह जिक्र होता है, लेकिन किसी और को इख्तियार तो नहीं मिला ना। है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी इख्तियार नहीं मिला, मूसा कलीमुल्लाह को भी इख्तियार नहीं मिला, और हम और आप जैसों को कोई इख्तियार मिलने वाला है? अगर चाहो तो रह लो, नहीं चाहो तो आ जाओ। तो एक्सटेंशन नहीं है कोई भी इस दुनिया के अंदर। दूसरी आयत एक खास वाकये में नाजिल हुई कि अब्दुल्ला बिन उबई उमैया ने, अभी उमैया ने, अब्दुल्ला बिन अभी उमैया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, यानी अब्दुल्ला बिन उबई जिसको कहते हैं मुनाफिकीन का रईस मुनाफिकीन, इन्नका मैतुन व इन्नहुम मैतुन, जी हमारी कंपनी में एक 85 ईयर्स के बंदे को सीईओ बना के वापस ले आए। जी होते रहते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अभी उमैया बिन अब्दुल्ला बिन उबई उमैया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मुआनदाना, यानी एक दुश्मनाना, ठीक है, इनाद दुश्मनी वाला मुतालबा पेश किया और कहा कि मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकता। अच्छा नहीं, ये वो नहीं है, अभी उमैया ये अलग है, वो अब्दुल्ला बिन उबई वो जो रईसुल मुनाफिकीन था उसका तो अलग मामला अलग था, ये तो मुशरिकीन मक्का में से है ना, पढ़ा था लेकिन ध्यान से निकल जाता है। तो उसने कहा कि मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकता जब तक मैं ये वाकया खुद ना देख लूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर चढ़ जाएं और वहां से हमारे सामने एक किताब लेकर के आए जिसमें मेरा नाम लेकर ये हो कि मैं आपकी तस्दीक करूं, और ये सब कहकर भी ये कह दिया कि आप ये सब कुछ कर भी दिखाएंगे मैं तो जब भी मुसलमान होता नजर नहीं आता। यानी आप तस्वुर करें कि इस बात के ऊपर इनको नबी अलैहिस्सलाम से कैसी दुश्मनी हो गई थी और कैसी जो है ना वो सख्ती आ गई थी। हालांकि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद किया करते थे, ये नबी अलैहिस्सलाम पे गोया के जान छिड़का करते थे ये लोग, उससे पहले जब नबी अलैहिस्सलाम ने इनको शिर्क और कुफर से और अपनी बदमाशियों से तौबा करने का कहना शुरू किया था, उससे पहले ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन इस मैसेज की वजह से, इस दावत की वजह से ऐसी दुश्मनी कि ये बातें कर रहे, तुम ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, लेकिन वैसे कर भी दोगे ना फिर भी मैं तुम्हारी बात ही मानूं। तस्वुर करें, आपको ये बात कोई कहे, आपका कोई रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त, आपका कोई पुराना जानने वाला, आपका कोई, हत्ता के कुछ तो ऐसे थे इनमें जो नबी अलैहिस्सलाम के कजन्स थे और उन कजन्स के साथ नबी अलैहिस्सलाम का इंतहाई दोस्ताना ताल्लुक था, लिटरली जिसको के उर्दू का मुहावरा है ना लंगोटिया यार, यानी साथ साथ रहते हैं हमेशा, उसको लंगोटिया यार कह देते हैं उर्दू के अंदर, ऐसे भी कजन्स थे नबी अलैहिस्सलाम के, लेकिन इस दावत के काम के बाद नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे दुश्मन बने, इतना सताया, इतना तंग किया कि इवन उनमें से दो जो थे या उनमें से एक जो था वो जब ईमान लाने के लिए सामने आए भी ना तो भी नबी अलैहिस्सलाम के दिल तैयार नहीं था उनको कबूल करने के लिए। वो तो उम्महातुल मोमिनीन ने नबी अलैहिस्सलाम को जो मशवरे, माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे मशवरे दिया करती थी बीवियां, राइट, उन्होंने मशवरा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जाने भी दे, यानी रहमतुल आलमीन का दिल कितना दुखा हुआ था उससे कि ईमान के लिए भी आया है ना फिर भी आपसे शर्म खामोश हो गए, ठीक है, कितना दिल दुखाया होगा इन लोगों ने, रहमतुल आलमीन का, ठीक है ना। अच्छा, अल्लाह के करने भी देखें, अगली लाइन जो है, अल्लाह के हाथ में हिदायत है, अल्लाह के नाम के में हिदायत, नाम क्या था उन सहाबी का, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सीरत नबी के अंदर उनका बड़ा तफसीली जिक्र आया था, अगर किसी को नाम याद हो बता दें। तो कहते हैं कि अजीब इत्तेफाक है ठीक है, यानी अल्लाह का करना अजीब है, इत्तफाक तो कोई चीज नहीं होती। हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अगर ये लफ्ज इस्तेमाल ना करते ना, तो हम कहते हैं ये गलत उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी आम आदमी कोई कहता है ना कि अजीब इत्तफाक है, तो हम कहते हैं ये इसको कहो कि अपने अल्फाज को चेंज करे, कोई चीज इत्तफाक ही नहीं होती, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। लेकिन हमारा दीन क्या सिखाता है कि अल्फाज से ज्यादा लफ्ज के कहने वाले की अहमियत होती है, लफ्ज के कहने वाले की अहमियत होती है। ठीक है, लफ्ज से ज्यादा कहने वाले की अहमियत होती है, यही लफ्ज के अजीब इत्तेफाक है। अगर ये कोई गाफिल किस्म का इंसान कहता, हम कहते इसने गलत कहा है, इसको ये बात की का ध्यान नहीं है कि अल्लाह ताला है, जब अल्लाह है तो फिर इत्तेफाक कैसा। तो इस वजह से कुदरतन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमारे मशायख। लेकिन यहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल करने वाले कौन है? हजरत मुफ्ती मौलाना शफी रहमतुल्लाह, राइट, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो अल्लाह वाले हैं, वो जाकिरीन में से हैं, वो इबरत की निगाह रखने वाले हैं। लेकिन अब उन्होंने जो ये लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है कि अजीब इत्तेफाक है, अब हम उनकी तावील करेंगे, अब हम उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन देंगे कि हजरत ने यहां पर मुहावरतन इस्तेमाल कर लिया ये लफ्ज, असल में मुराद नहीं है उनकी कि अजीब इत्तेफाक है, क्योंकि वो तो अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि अल्लाह की मर्जी से होता है जो कुछ भी होता है। तो ये बस एक एक उर्दू जुबान का मुहावरा है जो कि उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। ये जो मैंने पिछले 1 मिनट के अंदर जो बात कही है ना, उम्मीद है कि पुराने लोगों को तो समझ में आ गई होगी और याद रहती होगी, लेकिन जो नए लोग हैं पहली दफा इसको सुन रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से सुने, रिवाइंड करके रिकॉर्डिंग के अंदर इस बात को सुन लीजिएगा कि ये है उसूल, लफ्ज से ज्यादा लफ्ज के कहने वाले की अहमियत होती है। ठीक है, तो अगर कोई नेक मुत्तकी परहेजगार इंसान अगर जाहिरी तौर पर कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दे जो कि मुनासिब नहीं लगता, उसकी तावील करनी होगी, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी ऑन हिज बिहाफ और योर और ऑन हर बिहाफ, एक्सप्लेनेशन देनी होगी उसकी। ठीक है ना, ये नहीं कि उनके भी पीछे हाथ धो करके पड़ जाएं, और इस तरह के आजकल होता है मीडिया के ऊपर। अच्छा, अजीब इत्तफाक ये है कि फिर यही साहब मुसलमान हो गए, और ऐसे मुसलमान हुए कि इस्लाम के गाजी बनकर गजवे ताइफ में शहीद हुए, यानी गजवात में बाकायदा शामिल हुए और फिर ताइफ के गजबे के अंदर शहीद हुए, या कौन सा गजबा हो, यानी हुनैन होगा। तो कौम की ऐसे बेजा, यानी अल्लाह ताला ना ये देखिए करता रहता है, अल्लाह ताला भाई, अल्लाह ताला अल्लाह ताला है, हम कौन होते हैं कि अल्लाह पे एतराज करने वाले, कि अच्छा अगर उसको हिदायत देनी ही थी तो पहले इतनी दुश्मनी क्यों करवाई आपने उससे, या अगर आपको जो है वो नहीं देनी थी तो फिर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को इतना दुख पहुंचाने की उसको क्यों इजाजत दी, ऐसे ही उसको जो है वो भड़का देते, ऐसे ही उसको दुनिया से निकाल देते। भाई अल्लाह है, अल्लाह का मामला तो क्या है कि हसीनों को हर बात सजती है, अल्लाह ताला हसीन है, हुस्न को पैदा करने वाले हैं, अल्लाह ताला से ज्यादा हसीन कौन हो सकता है। हम तो दुनिया के अंदर अगर कोई थोड़ा सा हसीन हो जाए ना, तो वो कोई ऐसी कोई अजीब से नखरे दिखा दे तो लोग कहते हैं हसीनों को हर बात सजती है। ठीक है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो भाई जो करें जैसे करें, हमें समझ में ही नहीं आता कि उसमें हिकमत क्या है, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का कोई अमल कोई फेल जो है वो हिकमत से खाली नहीं है, अल्लाह ताला उसकी हिकमत को बेहतर जानते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि अल्लाह ताला ने गलत काम किया, चलो हसीन है तो इस वजह से हम कोई इतराज नहीं करेंगे, वरना गलत काम किया नहीं, अल्लाह ताला का मामला जो है वो दुनिया के हसीनों जैसा नहीं है कि वो अपने नाज नखरे में गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ से जो है ना वो कर लेते हैं, कोई बात नहीं यार हसीन है तो इस वजह से उनका गलत काम भी जायज है। अल्लाह ताला के साथ तो गलती का शायबा भी नहीं है, एहतमाल ही कोई नहीं है अल्लाह ताला के साथ। ये जो बार बार बोलते रहते हैं सुबहाना सुबहान अल्लाह सुबहान रब्बी अल अजीम, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला से गलती का शायबा भी कोई नहीं है, एहतमाल ही कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला हसीन तर तो हैं, लेकिन अल्लाह ताला गलती भी नहीं करते हैं। हाँ, हमारी जो है वो कमी कोताहियां, अकल की भी कमी, इल्म की भी कमी, समझ की भी कमी, इस वजह से हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने पहले इनके साथ ऐसा मामला किया, बाद में उनको जो है वो गाजी बना करके जो है वो शहादत का दर्जा भी दे दिया, यानी मुजाहिद बना करके शहादत का दर्जा भी दे दिया। कौम के ऐसे बेजा मुआनदाना मुतालबात और इस्तेहजा के रंग में मुकालमात ने माँ बाप से ज्यादा शफी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर क्या असर किया होगा, उसका सही अंदाजा हम नहीं कर सकते। सिर्फ वो शख्स महसूस कर सकता है कि जिसको कौम की सलाह व फलाह की फिक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लगी हुई। ठीक है, यानी माँ बाप से ज्यादा शफी है। माँ शफकत का मामला करे बच्चों के साथ और बच्चे आकर के ऐसा जवाब दें, ऐसा जवाब दें कि आप कुछ कर लें, मैंने तो आपको अपनी माँ माना ही नहीं है, राइट? मैंने तो आपके इस एहसान को तस्लीम ही नहीं करना, जैसे कहते हैं ना आजकल के बच्चे कितना ज्यादा कहते हैं, है? जब उनका दिमाग जो जब आपने भी खैर कौन सी उनको दीन की तालीम दी थी और उनको जो है वो आदाब सिखाए थे, तो कल को फिर वो आकर के बोलते हैं आपने क्या कर लिया, सभी करती हैं, सारी माएं करती हैं, बाप को कहते हैं कि आपने कौन सा जो है वो कमा करके लाके मेरे ऊपर एहसान किया, हर बाप ये काम करता है। पहली बात तो ये हर बाप करता नहीं है ऐसा काम, है? और आजकल तो हर माँ भी ऐसा काम नहीं करती, ठीक है ना? तो माँ जो करती है ना, बच्चों के साथ वक्त लगाती है, बच्चों की जो है वो शफकत और उनके हर चीज का ख्याल रखती है, ऐसी माएं भी कम होने शुरू हो गई हैं दुनिया के अंदर बहुत, ठीक है ना? वरना करियर ओरिएंटेड माइंड जो है ना, उनके पास टाइम ही होता है बच्चों के लिए। बहरहाल, लेकिन बच्चे जो हैं जब वो गुमराही के रास्ते पर चलते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं, आपने कौन सी बड़ी बात कर दी, तो फिर उसको सुन करके जो ऐसी शफीक माँ या शफीक बाप के दिल पर क्या गुजरती है, ठीक है? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तो उनसे भी ज्यादा शफीक है, हरीसुन अलल मोमिनीन, क्या लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, ये नबी अलैहिस्सलाम ईमान वालों, यानी जो जो नबी अलैहिस्सलाम की बात मान ले लोग, इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस हैं। हरीस का लफ्ज जो है वो क्या मतलब होता है, हरीस होना, ये ना हम जो है वो इसको सिर्फ नेगेटिव मानी में इस्तेमाल करते हैं, ये शख्स तो लालची है, ये शख्स तो हरीस है, ये उस शख्स को कहा जाता है कि जिसको आप जितना भी दे देना उसको और चाहिए, राइट? जितना भी दे दें और चाहिए, जितना भी दे दें और चाहिए, इसकी लालच ही खत्म नहीं होती, इसकी हिरस ही खत्म नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम की हिरस किस बात की थी कि कोई ईमान में दाखिल हो जाए तो उसके ऊपर इत्मीनान हो कि नहीं, कि हाँ भाई आ तो गए मेरे पास, मेरी तो एक जमात बन गई ना, मेरे तो फॉलोअर्स बन गए ना, अब बाकी जाएं जहन्नुम में, बाकी जाएं भाड़ में जाएं, जैसे हम कहते हैं ना, बाकी भाड़ में जाएं, मेरी तो एक जमात बन गया, मैं उनके साथ जो है वो खुश हूं, नहीं, हरीसुन, और चाहिए और चाहिए, और लोग ईमान में दाखिल हो जाएं, ताकि क्या, ईमान में दाखिल होने का क्या मतलब है कि मेरी जमात बन जाए, नहीं, जहन्नुम से बच जाए, हमेशा हमेशा की जहन्नुम से बच जाए। और इवन जो ईमान में दाखिल हो चुके हैं वो भी गुनाहों से बच करके जिंदगी गुजारे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बैत ले रहे हैं, बैत तौबा, हाँ भाई सब जो है वो हाथ उठा करके मेरे साथ वादा करो कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, ये गुनाह नहीं करूंगा, ये गुनाह नहीं करूंगा, यानी और कुछ नहीं बन पा रहे। हम कभी वादा लेते हैं किसी से, हम तो बैत बैत का तो तसव्वुर ही सारा खत्म हो गया ना, अब उसके बगैर ही सारा चल रहा है मामला, जब भी ऐसा चल रहा है, जो सुन्नत तरीका था वो तो अब खत्म हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा वो होती है तसव्वुफ की बैत होती है, बस काम काज में तो बैत शायद तसव्वुर ही कोई नहीं, ठीक है ना? नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बैत लिया करते थे, वादे लिया करते थे, फिर उसके बाद काम होते थे, बैत रिजवान, राइट, बैत उकबा पूला और बैत उकबा सानिया, फिर उसके बाद काम, यानी एक होता है आप इंटेलेक्चुअली कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, ताकि बंदा कन्विंस होकर के फिर आपके साथ आ जाए और आपकी जो है वो मदद करना शुरू कर दे। एक होता है कि नहीं अभी भी जो है ना इसका एहतमाल है कि ये अपनी इसका जहन फिर जाएगा, शैतान उसको जो है वो आफिर कर देगा, चलो मैं एक और लेवल ऑफ कमिटमेंट इससे ले लें, एक कमिटमेंट का लेवल उसमें मजीद ऐड कर दूं जिसको बैत करवाना कहते हैं, ताकि कल को अगर शैतान इसको वरगलाए तो इसको कहने वाले लोग मौजूद हों कि यार तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम साथ दोगे, हम खुद वहां पे गवाह थे, हम खुद सुन रहे थे कि तुमने कहा था कि तुम साथ दोगे, तो तो अब तुम जो है वो क्यों पलट रहे हो? इसको कहते हैं बैत करना, इसको कहते हैं बैत करना, आके आप लोगों को गवाह बना दें, उनके सामने अलल ऐलान बैत करें, दो गवाह बन जाएं, ताकि आपके लिए वापस जाना मुश्किल हो जाए, शैतान के लिए आपको वरगलाना मुश्किल हो जाए। ये क्या है? ये हिर्स है नबी अलैहिस्सलाम की, ये हिर्स है नबी अलैहिस्सलाम की कि लोग आ जाएं और वापस ना जाएं बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे शफीक नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये लोग ऐसा बर्ताव करते थे। ठीक है, वहशी रज़ी अल्लाह तआला का जो आपने नाम लिखा है वो पता नहीं क्यों लिखा है भाई, वो तो जब काफिर थे उन्होंने वो उनका तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ पर्सनल ऐसी इंटरेक्शंस नहीं थी ना। ठीक है, अच्छा ये तो पर्सनल इंटरेक्शन जिन लोगों के साथ थी उनकी हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे दुख दिया करते थे। उन्होंने जो दुख दिया था वो तो दूसरा एक अंदाज का दुख था, जो कि हजरत हमजा रहता उनको शहीद करके नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचा था। अच्छा आगे कहते हैं कि अच्छा ये बात भी कि जो लोग नबी अलैहिस्सलाम की तरह से उम्मत की फिक्र करते हैं ना, तो उनकी भी दिल की कैफियत जो है वो वैसी बन जाती है, लेकिन जाहिर है उतनी उस लेवल पे तो उनकी दिल की कैफियत पहुंच ही नहीं सकती नबी अलैहिस्सलाम की जैसे और सहाबा कराम की जैसे थी, लेकिन कम से कम उनको कुछ पहचान हो जाती है कि किसी को आइडियोलॉजिकल तरीके से उनकी खैरख्वाही के लिए आइडियोलॉजिकल दावत दी जाए, और फिर उसके बाद जो है ना जब आपके साथ ऐसा सलूक करें, सौतेला किस्म का सलूक करें, या जो है वो आपको धोखा देने की कोशिश करें, तो फिर दिल पे क्या गुजरती है? ठीक है ना, ये सिर्फ उसी को फील हो सकता है जो कि नबी अलैहिस्सलाम की तरह से इस यानी एक नजरियाती दावत का काम कर। ठीक है, हम तो दुनियावी तौर पे किसी के साथ फेवर करते हैं ना, किसी को जॉब दिलवा दी, या किसी की जॉब के लिए मेहनत कर ली, किसी का जो है वो प्लॉट फंसा हुआ था तो उसकी प्लॉट को जो है वो निकालने की मेहनत कर ली, उसके लिए फायदा की मेहनतें कर ली, अब आगे से जो है वो उसने अप्रिशिएट ना किया, या उसने जो है वो आकर के हरी झंडी दिखा दी, या हमें जो है वो उल्टे सीधे कोई बातें कह दी, तो हमारा दिल फट जाता है। ठीक है ना, लेकिन वो तो एक फिजिकल टेंजिबल चीजें थी ना, जॉब मिलना और जो है ये मिलना, ये जो आखिरत की जो फिक्र है ना, ये तो दुनिया की सारी फिक्रों से बहुत बुलंद फिक्र है, और एक इंतहाई यानी एक इसकी कोई टेंजिबल बजाहिर ऐसी कोई हैसियत ही नजर नहीं आती इस दुनिया के अंदर। ये सारी अप इन द ब्रेन अप इन द माइंड किस्म की चीजें हैं ये। ठीक है, लेकिन असल जिंदगी से इसका ताल्लुक है जो कि मौत के बाद शुरू होगी, उसके ऊपर जो है वो कोई आपके साथ ऐसा सलूक करे तो फिर आपको पता चलता है कि क्या दिल पे गुजरती है। इसीलिए इस आयत में आपको तसल्ली देने के लिए इरशाद फरमाया गया कि उनके ये मुतालबात किसी गर्ज और मकसद के लिए नहीं है, ना उनको यानी कोई इनकी ये गर्ज मकसद नहीं है, ना उनको अमल करना मकसूद है कि हाँ चलो हमें कन्विंस हम हो जाएंगे इस तरीके से तो फिर हम उसके ऊपर अमल करेंगे या हम इनकी बात मान लेंगे। ठीक है, ये इनका मकसद नहीं है, उनका हाल तो ये है कि जो कुछ ये तलब कर रहे हैं, अगर इससे भी ज्यादा वाजह सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के उनके सामने आ जाए, जब भी ये कबूल नहीं करें। ठीक है, मसलन हम उनकी फरमाइश के मुताबिक आसमान से कागज पर लिखी हुई किताब उतार दें, और सिर्फ यही नहीं कि वो आंखों से देख लें जिसमें नजरबंदी या जादू वगैरह का इस्तेमाल रहे, बल्कि वो इस किताब को अपने हाथों से छू कर भी देख लें कि महज ख्याल नहीं हकीकत है ये, मगर चूंकि उनकी सारी बातें महज इनाद की वजह से हैं, तो फिर भी यही कहेंगे कि इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, यानी ये तो खुला हुआ जादू। ठीक है, देखिए ये जो अल्लाह ताला ने मॉडल दिखाया है ना, ये मॉडल हमारे लिए बड़ा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तो खुदा है, आलिमुल गैब है, हर चीज को जानते हैं। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं थे, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो एक नरम दिल रखने वाले, एक एक फिक्रमंद दिल रखने वाले इंसान थे। ठीक है, तो अब उनके सामने आ करके जब ये लोग ऐसी डिमांड्स करते थे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम को इनके दिल का हाल नहीं पता होता था कि ये जो मुझसे ये डिमांड्स कर रहे हैं इनका इरादा कोई नहीं है, ये सिर्फ मुआनिदाना डिमांड्स कर रहे हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ये कैफियत पैदा होती, या नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहते कि इनकी डिमांड्स को पूरा कर देते हैं, इनकी डिमांड जो है ये क्या ये मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बड़ा था नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर था उस वक्त और ऊपर है हम सबके, उसको पता था कि नहीं ये नहीं मानेंगे, इनका इनका नियत ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है मानने का, तो इस वजह से ना इनकी डिमांड्स पूरा पूरा करने का कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं पूरी करूंगा। ठीक है, ये मॉडल जो है ना ये हमारे ऊपर भी पोर्ट होता है, और ये दरअसल हमारे इवन घरानों के अंदर भी ये चीज हमारे सामने मौजूद होती है कि वालिदैन होते हैं ये बड़े होते हैं, ठीक है ना। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का तो कोई भी बराबर नहीं हो सकता, राइट, कि हर चीज का इल्म हो, लेकिन मॉडल को देखा जाए तो मॉडल के अंदर वालिदैन भी ज्यादा इल्म वाले होते हैं, औलाद के मुकाबले में ज्यादा इल्म वाले होते हैं, ज्यादा तजुर्बे ज्यादा मुशाहिदा रखने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। अब औलाद जो है वो उनकी वो कम इल्म है, कम अकल है, कम मुशाहिदा है, तो उनके सामने आकर के कोई जो है ना वो कहता है कि भाई तुम जो है ना फलाना काम कर लो तो मैं तुम्हारी बात मानना शुरू हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर लूंगा, दोस्ती बना लूंगा और ये हो जाएगा। लेकिन ऊपर के वालिदैन जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि नहीं ये जो है ना इसके तो हालात ठीक नहीं है, इसकी जो है ना वो पीछे आगे के मामला जो है वो सही नहीं है, ये पहले भी लोगों के साथ धोखा कर चुका है, ठीक है ना, ये अब जो है ना इसने मेरी औलाद को देख लिया है, अब ये मेरी औलाद के साथ आकर के धोखा करेगा, तो वो औलाद को कहते हैं कि नहीं, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हम इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे, हम इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहले भी लोगों को धोखा दे चुके हैं और ये जो है ना आपको भी सिर्फ धोखा देने के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे मौके के ऊपर औलाद को क्या करना चाहिए कि वो अपने से ज्यादा इल्म अपने से ज्यादा तजुर्बे रखने वालों की बात को तस्लीम कर ले और मान ले कि हाँ भाई जो वो कह रहे हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं, बस जो कह रहे हैं तो मान लेते हैं ना हम उनकी बात, है ना, हम मान लेते हैं ना, वो आ जाएंगे ना, वो जो कह रहे हैं वो तो सच्ची तो कह रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी हमसे झूठ बोलने की, तो भाई ये अब आपको इल्म नहीं है ना इस चीज का, अब आपको क्या समझाया जाए, ये तो आपको फिर वक्त ही बताएगा कि अगर इनकी बात मान लेंगे तो कल को ये आपको भी धोखा देंगे, ठीक है। तो ये इवन आज भी चल रहा होता है, इवन दीनी जो जो मामलात हैं उनमें भी ना हमारे मशायख हमें कुछ चीजें समझा रहे होते हैं, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए कि भाई ये ऐसे लोग नहीं है कि इन पर आप ट्रस्ट करें, ठीक है। क्या पूछनी है आपके दोस्त, फातिहा जो खाने में पढ़ते हैं वो गलत क्यों है जबकि फूका पानी पीना सही है, क्या जवाब दूं उसको, फातिहा जो खाने में पढ़ते हैं वो गलत क्यों है जबकि सूखा हुआ पानी पीना सही है। फातिहा पढ़ करके आप खाने में थूक देना, किसने आपको मना किया, खाने के अंदर बरकत आ जाएगी, ठीक है। तो ये गलत क्यों है ये मुझे नहीं पता, आपको किसने कहा, पता नहीं आप किस चीज का सवाल कर रही हैं, आपके सवाल से ये बात वाजे नहीं कि फातिहा जो खाने में पढ़ते हैं भाई वो किसी और के नाम की पढ़ते हैं, वो कुछ और चीज है, सूरह फातिहा की तिलावत करके पानी में फूंक करके उस पानी को पी लेना या खाने में फूंक करके उस खाने को खा लेना, इसमें तो कोई खराबी नहीं है, ये किसी और के नाम की फातिहा ये क्या चीज होती है भाई। अब ये वही बिदतों बिदतियों के यहाँ जो है वो एक एक तमाशे होते हैं, करते कुछ और है नाम उसको कुछ और लगा देते हैं, किसी और के नाम की फातिहा पढ़ रहे, अल्लाह के बंदे एक ही फातिहा है सूरह फातिहा जो कि अल्लाह के कलाम की फातिहा है बस, ठीक है। हाँ तो दूसरे की नाम की फातिहा क्यों, ये दूसरे के नाम की फातिहा फिर होती क्या चीज है, पहले तो ये डिफाइन करें ना कि आप ये चीज क्या होती है जिसको क्या आप पूछना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह, हम इन बिदतों से वाकिफ नहीं है, पहले होती थी ये सारी हमारे घरानों के अंदर भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब नहीं करते, ये सारे सवाब की नीयत से करते हैं खाने पर फातिहा, भाई इसको खाने पर फातिहा फातिहा का लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें, ये सूरह फातिहा है कुरान मजीद के अंदर, ठीक है। ईसाले सवाब के लिए किसी गरीब को किसी जो है वो लाचार को आपने खाना खिला दिया और अल्लाह ताला से ये दुआ करी कि ए अल्लाह गरीब को खाना खिलाने का जो सवाब आप मुझे देंगे वो सवाब मेरे फलाने जो दुनिया से जा चुके हैं उनको भी पहुंचा दीजिए, इसको कहते हैं ईसाले सवाब। इसको उनके नाम की फातिहा कहना शुरू कर देना ये बेवकूफी है, ये जहालत है, ठीक है ना। इसको उनके नाम की फातिहा नहीं कहा करें, ये गलत अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए, आप खत्म करें इनको। आप कुरान की दर्स आप सुन रही हैं तो पुरानी चीजों को छोड़ें ना। उसके बाद ईसाले सवाब ये साबित चीज है कि जो सवाब का काम आप करें, आप अल्लाह से दुआ दिन में ये कर लें कि ये सवाब का काम जो आपकी तौफीक से मैंने किया है, इसका सवाब जो है मेरे वालिद मरहूम को पहुंचा दीजिए, मेरी वालिदा को पहुंचा दीजिए, मेरे फलाने को पहुंचा दीजिए, बस खत्म बात, ठीक है। तो तलबीस ना क्या करें, ये कर ली लोगों ने, शयातीन ने तलबीस करके हमें हमारा बहुत बेड़ा गर्क किया हुआ है, अब इसको खत्म करें। फातिहा कुछ था, ईसाले सवाब कुछ और काम था, उन दोनों को मिक्स करके खाने पर फातिहा, यानी एक अजीब नई टर्म बना ली, ठीक है। ये अमल अहले बिदअत करते हैं, बाकायदा अरबी अल्फाजों के साथ पढ़ते हैं, यानी नियाज करते हैं, आज जो भी करते हैं नाज करते हैं, नियाज करते हैं, ठीक है। चलें, यहाँ पर टाइम खत्म हो चुका है इतने क्लास का, तो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह बाकी पढ़ेंगे। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।